मेरे अजीज दोस्तों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 29 मार्च 2017 है और आज के इस afias.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी अपने नौजवान साथियों का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का भी, जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन साथी का नाम है अंकित कुमार, जो बेगूसराय बिहार से हैं। तो अंकित, मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज एनालिसिस की और उसकी शुरुआत करते हैं ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज से। मैं आज दूरदर्शन की न्यूज को लेकर नहीं चल रहा हूं और वह आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। मैं कुछ दिनों तक लगातार दूरदर्शन की न्यूज के महत्व की बात करता रहा हूं, उनके तथ्यों के बारे में भी आपको बताता रहा हूं और मुझे लगता है कि अब वह आपकी आदत में शुमार हो चुका होगा कि आपको रोज सैटरडे संडे को अगर आप छोड़ दें तो दूरदर्शन की न्यूज सुनने के लिए वक्त निकालना ही चाहिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि दूरदर्शन के न्यूज को सुनने का वक्त निकालने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि एक तो उसका टाइम फिक्स है, दूसरा वो दूरदर्शन की बात है, आपको उसके सामने होना पड़ेगा, यानी कि थोड़ी देर के लिए टिकना पड़ेगा। अब मुझे ये जानकारी नहीं है, इनफैक्ट मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा कि आपके स्मार्टफोन पर वो अवेलेबल है कि नहीं है। अगर आप में से किसी को ये जानकारी हो कि आप अपने फोन पर भी उसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, तो प्लीज मुझे बताएं ताकि मैं अपने इस डेली ऑडियो लेक्चर में उसकी सूचना अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी दे सकूं और उसका फायदा उठा सके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे यह जानना चाहा है। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने और भी सोर्स से इसे पता करूं और जैसे ही मुझे पता लग जाएगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन मित्रों, जो आप लोगों ने इस समस्या का हल मुझसे जानना चाहा है, वो उसका हल एकमात्र यही है कि या तो आप उसे उस समय सुने, या फिर अगर कोई स्टूडेंट मुझे बता देगा कि इस तरह से रिकॉर्डेड भी होता है तो वह उसका हल हो सकता है कि मैं आपको बता दूं आप सुने, या फिर तीसरा हल ये हो सकता है कि आप अपने घर में अपने दोस्त को किसी को कहें कि जब भी डीडी न्यूज आता है तो वह उसे रिकॉर्ड कर ले और फिर बाद में आप अपनी सुविधा अनुसार उसे सुन लें। लेकिन अगर आप सोचें कि न सुनने का कोई विकल्प है तो ये मेरे लिए बताना बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अगर आप नहीं ही सुन रहे हैं तो अब ये बिल्कुल न सोचें कि आपके सिविल सर्विस की तैयारी हो ही नहीं रही है, यह भी सोचना गलत होगा। सिविल सर्विस की तैयारी हो रही है, दूसरे बहुत से रिसोर्सेज हैं, लेकिन बस ये मान लीजिए कि एक बहुत अच्छा रिसोर्स जो आपके लिए आसान होता, जरा प्रभावशाली भी होता और शायद सबसे अधिक गुणकारी भी होता, वह आप किसी वजह से मिस कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए अगर वह मिस हो रहा है तो कोई दूसरा माध्यम सही, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि यदि कर सकते हैं तो करें। दोस्तों, रेडियो न्यूज में कल कुछ तीन चार इम्पॉर्टेंट खबरें थीं, जैसे एक आपने जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस के ऊपर हमारे वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट सुना रेडियो पर कि अब ये संसद में पेश किया जा चुका है। संसद में क्या मतलब, एक देखिए कि हमेशा ये धन विधेयक है और धन विधेयक याद रखिए कि केवल लोकसभा में पेश किया जाता है धन विधेयक, क्योंकि धन विधेयक के बारे में सारे जो अधिकार होते हैं, जिसे हम फाइनेंस बिल कहते हैं, वो लोकसभा के पास होते हैं। यहां तक कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला करने का अधिकार भी स्पीकर को होता है, लोकसभा के अध्यक्ष को होता है। राज्यसभा को इस पर कोई अधिकार नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक उसे रोक सकता है। यदि वो संशोधन सुझाता है, उसको अधिकार है कि वो संशोधन सुझाए। अगर राज्यसभा में गया है तो रखने के लिए नहीं गया है, वो हमारा एल्डर हाउस है, वहां बिल भेजा जाएगा, वहां उस पर चर्चा होगी, लोग उस पर बातचीत करेंगे, लोग पढ़ेंगे, वो अपने संशोधन सुझा सकता है। लेकिन लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है, अगर उसको ठीक लगता है लोकसभा को तो वो मान लेगा, नहीं ठीक लगता है तो रिजेक्ट कर देगा। दूसरी बाध्यता यह है कि राज्यसभा उसे 14 डेज से ज्यादा नहीं रख सकता अपने पास, केवल 14 दिन, और अगर 14 दिन में वो कुछ नहीं करता है तो मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उसे लौटा दिया है। एक शब्द और भी आपको दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में पढ़ने को मिलेगा कि राज्यसभा धन विधेयक को पारित नहीं करता है, शब्द आप देखेंगे कभी ध्यान से, हमेशा कहा जाता है कि उसने धन विधेयक लौटा दिया है, यानी कि पढ़ने के बाद उसे लौटा दिया है, कुछ सलाह के साथ लौटा दिया है या ज्यों का त्यों लौटा दिया है, ये राज्यसभा के ऊपर है और फिर वो लोकसभा इसके बाद वो पारित हो जाता है। तो मित्रों, खासकर मैंने धन विधेयक के बारे में इसलिए आपसे थोड़ी सी जो उसका जो केंद्रित जो कर चरित्र होता है उस पर बात की है, क्योंकि अक्सर प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने देखा है कि धन विधेयक को लेकर के प्रीलिम्स में एक न एक क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हर साल आ जाता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, यानी कि धन विधेयक किसे कहते हैं, कौन कौन से धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं। हालांकि आप देखेंगे कि अब इसका दायरा बहुत ज्यादा फैला दिया गया, धन विधेयक के दायरे को भी बहुत ज्यादा फैला दिया गया है, बहुत से ऐसे विधेयकों को धन विधेयक मानकर पेश किया गया जिसको लेकर के बहुत ही एक विवाद की स्थिति भी रही है, जिस पर आपको बीच बीच में अखबारों में पढ़ने को मिलता भी होगा, क्योंकि सरकार को जब ये भय रहता है कि, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी विधेयक को कर देंगे, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं न कहीं धन का संबंध तो होना ही चाहिए। सरकार ने ऐसा कुछ किया भी है, क्योंकि सरकार के पास अभी राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा सतर्कता के साथ कदम बढ़ा रही है। इस पर आपकी बहुत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए। देखा आपने दोस्तों कि न्यूज में सुना कि चर्चा के लिए एक बिजनेस होता, पहले ही एक बिजनेस कमेटी होती है, हाउस बिजनेस कमेटी, किस विषय पर कितनी देर तक बातचीत की जाएगी वो उसका फैसला करते हैं, जिसमें सभी पार्टी के सदस्य होते हैं। इसके लिए 8 घंटा रखा गया है, 8 घंटे तक इस पर बातचीत होगी और इसके बाद फिर वो पारित हो जाएगा। यहां से पारित होने के बाद जो स्टेट जीएसटी है वो राज्यों में जाएगा, राज्य की विधानसभाएं फिर उस पर चर्चा करेंगी और जब राज्य की विधानसभाएं इसे पारित कर देंगी तो इसे पारित मान लिया जाएगा। एक बहुत खूबसूरत शब्द आपने सुना फ्रेंड्स रेडियो न्यूज में ही, साझी संप्रभुता। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि ये जो जीएसटी है ये साझी संप्रभुता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये साझी संप्रभुता क्या है? देखिए, जो संप्रभुता है वो नो डाउट कि एक राष्ट्र की संप्रभुता है। संप्रभुता ही किसी राष्ट्र को सच पूछे तो राष्ट्र बनाती है। जैसे भारत एक सॉवरेन स्टेट है, ऐसा नहीं कि हमारे पास सॉवरेन स्टेट तभी होगा जब वहां सरकार हो, जब वहां पॉपुलेशन हो, जब वहां की सीमा हो। राज्य के जब हम तत्व की बात करते हैं तो राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए, उसका अपना निश्चित क्षेत्रफल होना चाहिए, आप किताबों में पढ़ेंगे, उसकी अपनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, इसके बाद फिर आप पढ़ेंगे कि उसकी एक संप्रभुता होनी चाहिए। अब आप देखिए कि पॉपुलेशन और सीमा हमारे पास अंग्रेजों के समय में भी थी, लेकिन हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, इसीलिए कहते हैं कि विदेशियों का राज्य था। जब वो संप्रभुता हमारे पास आ गई तब वो हमारा राष्ट्र हुआ, तो संप्रभुता बहुत मायने रखती है। तो याद रखें कि संप्रभुता राष्ट्र की होती है, लेकिन उन्होंने जो साझी संप्रभुता की बात कही है इसका मतलब हुआ फेडरल स्ट्रक्चर, और कुछ नई बात नहीं है। उन्होंने कोई संविधान में संशोधन की बात नहीं कही है, संविधान से हटकर कोई बात नहीं कही है। वित्त मंत्री जी हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही रिनाउंड एडवोकेट हैं। साझी संप्रभुता का मतलब है कि हमारी जो सॉवरेंटी है, जो नेशन की सॉवरेंटी है, उसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी है। आप देखते हैं हमारे यहां जो 3 तरह की जो सूचियां बनाई गई हैं, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और संवर्ती की, वो भी एक तरीके से कहीं ना कहीं संवर्ती सूची तो सीधे साझी संप्रभुता को ही व्यक्त कर रहा है कि दोनों मिलकर बनाएंगे। और केंद्र, अगर राज्य सूची को ले ले तो वो केंद्र की एक्सक्लूसिव संप्रभुता को व्यक्त कर रहा है कि इस पर तो पूरी तरह से आप ही मालिक हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। और इसके बाद फिर अब वो जीएसटी काउंसिल आ गई है, जीएसटी काउंसिल में जहां सभी राज्य उसके मेंबर होते हैं। तो मित्रों, मैंने खासकर इस साझी संप्रभुता की बात इसलिए की कि कभी कभी एग्जाम में ना इस तरह के पूछ लिए जाते हैं कि भारत अब साझी संप्रभुता के दौर में वास्तव में प्रवेश कर चुका है, क्या आप इससे सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। अब है ये बड़ा सरल, मतलब अगर आप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो आप देखिए मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है, वो पुरानी चीज के आधार को ही लेकर के जो नई चीज कही गई है बस उसका मैंने खुलासा किया है, तो सब पहले की ही बातें। तो बस वो जरा सी दृष्टि आपकी विकसित हो जाए तो फिर बात बन जाती है मित्रों। और सच पूछिए तो मैं पूरी विनम्रता के साथ इसको स्वीकार करता हूं कि ये जो मेरा डेली ऑडियो लेक्चर है ये उस दृष्टि को विकसित करने का ही एक प्रयास है। ये नहीं कि मैं आपको कोई सिलेबस पढ़ाने जा रहा हूं, कोई कोर्स तैयार करा रहा हूं, नॉट एट ऑल। उस दृष्टि को ही विकसित करने की मेरी कोशिश होती है जो बहुत जरूरी है होनी ही चाहिए, क्योंकि इस दृष्टि के बिना सिविल सर्विस को क्वालिफाई करना काफी कठिन है, शायद असंभव भी हो। इसके बाद जो दूसरी खबर थी फ्रेंड्स, वो आयोगों के पुनर्गठन की बात आपने न्यूज में सुनी कि हमारे जो अनुसूचित जाति आयोग है, अनुसूचित जनजाति आयोग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसमें देखिए जो पुनर्गठन शब्द जो आया है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड था बेसिकली। पुनर्गठन मतलब उसके जो अध्यक्ष और दूसरों की जो नियुक्ति होनी चाहिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, उनकी नियुक्ति की जाए। तो मुझे जरा पुनर्गठन शब्द थोड़ा सा वो लगा, इंग्लिश में पता नहीं कौन सा शब्द आया है, मतलब अपॉइंटमेंट की बात है। फिर आपने ये भी सुना कि जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है उसमें नंद कुमार साय जी को अध्यक्ष बनाया जा चुका है और वो बनाया आगे भी अपॉइंट किए जाएंगे। मैं चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो आयोग है, इन आयोगों को आप इस साल के लिए, मेंस के लिए, यहां तक कि प्री के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माने, क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि तीन चार दिन पहले ही जो आपके राष्ट्रीय सामाजिक एवं शैक्षणिक अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सरकार ने घोषणा की है कि मतलब कैबिनेट डिसीजन है कि हम इसे एक संवैधानिक आयोग बनाएंगे, और इसके बाद से आयोगों पर डिस्कशन शुरू हो गए हैं, और खासकर जो पिछड़ा वर्ग आयोग है इसको लेकर के तो मैंने कुछ आपको आर्टिकल्स भी प्रोवाइड किए हैं कि जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसे किस रूप में सोच रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल होने के लिए रिजर्वेशन की डिमांड अलग अलग समूहों में भी अब आने लगी है, जैसे जाट समुदाय मांगने लगा है, गुर्जर समुदाय मांगने लगा है, आंध्र प्रदेश में भी इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो अब इसको रीडिफाइन करने की जरूरत है। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सरकार की अपनी आंख बचाने, इस समस्या से निपटने की अपनी तरकीब है, कुछ लोग कहते हैं समस्या से बचने का अपना तरीका है, तो ठीक है, वो तो विश्लेषण अपने अपने ढंग से होता है और यही विश्लेषण की खूबसूरती भी होती है। लेकिन कुल मिलाकर यह कि आयोगों पर चर्चा शुरू हो गई है, तो आपको अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, और साथ ही साथ इसी के जो महिला वर्ग आयोग है इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि संविधान में इसकी क्या स्थिति है, इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ये किस तरीके से काम करते हैं, इनके क्या अधिकार हैं और इनके क्या दायित्व हैं, इसके बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से। चूंकि फ्रेंड्स मेरे अपने जो डेली ऑडियो का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का नहीं है कि मैं इन पर आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं, कि एक्सक्लूसिव बात कर सकूं, लेकिन उसका जो विश्लेषणात्मक रूप होता है, उसमें जो जटिलताएं होती हैं, उसकी जो समसामयिकता होती है, वो मैं अपने तरीके से आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट खबर थी, इसे आपको एक कंटेंट के रूप में नोट कर लेना चाहिए, और वो यह है कि सरकार ने गेहूं और अरहर की दाल पर 10% आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। यह बहुत इम्पोर्टेंट खबर है किसानों के हित में। खासकर देखिए आयात शुल्क लगाने का क्या मतलब है, क्लास के स्टूडेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आयात शुल्क का मतलब है मित्रों, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका से हमारे यहां अगर गेहूं मंगाया जाए तो वो गेहूं 1,000 रुपए क्विंटल में आ जाएगा अमेरिका से, अगर क्योंकि अमेरिका में गेहूं का उत्पादन बहुत होता है, उनको बहुत सस्ता पड़ता है, तो 1,000 रुपए में हमारे मार्केट में सप्लाई कर देंगे भारत के बाजार में। अब हमारे यहां मान लीजिए कि गेहूं की कीमत 1,100 रुपए है, 1,100 है, तो अब होगा ये कि जो अमेरिकन गेहूं है वो हमारे जब मार्केट में आ जाएगा तो हमारे यहां के किसानों को फिर 1,100 रुपए से कम ही रेट होगी, क्योंकि 1,100 रुपए में तो वो गेहूं बिकेगा, बेचने वाला जो व्यापारी अगर 1,100 रुपए में बेचेगा तो किसानों से तो 1,100 में नहीं खरीदेगा ना, वो 1,050 में या कुछ ऐसा खरीदेगा। तो अब किसानों की पता लगा कि गेहूं पैदा करने की ही जो लागत है वो 1,000 रुपए क्विंटल आ रही है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, फिर तो नुकसान में होंगे, तो हमारे अपने जो किसान हैं उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। और आपको मालूम है कि 58% पॉपुलेशन हमारी अभी भी खेती के कामों में लगी हुई है। ऐसे में सरकार क्या करती है, आयात शुल्क लगा दिया। आयात शुल्क कितना में लगा दिया, 10%। मान लीजिए कि बाहर से अमेरिका से अगर मैं गेहूं मंगाता हूं तो वह मुझे 1,000 रुपए में देने को तैयार है। अगर मैंने 1,000 रुपए में मंगाया तो अब बट नेचर लेके मुझे 10% उस पर आयात शुल्क भी देना होगा, यानी कि 100 रुपए मुझे सरकार को देने होंगे, तो वह गेहूं मुझे पड़ेगा 1,100 रुपए का, 100 रुपए शुल्क के हो गए, 1000 रुपए उसकी ओरिजिनल प्राइस हो गई, 1100 रुपए का। अब बट नेचुरल कि मैं अब 1100 रुपए से ज्यादा में ही तो बेचूंगा ना मार्केट में। तो इस तरीके से भारतीय जो किसान है उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। आयात शुल्क ज्यादातर इसी दृष्टि से लगाई जाती है, नो डाउट इससे सरकार को आय तो मिलती ही है, लेकिन यहां जो लगाया गया है वो आय के लिए नहीं लगाया गया है कि सरकार कोई कमाई करना चाहती है। इसका जो उद्देश्य है वो हमारे अपने किसानों के आर्थिक हितों की रक्षा करने के लिए यह कदम उठाया गया है। और सच पूछे तो जो लिबरलाइजेशन की जो हम बात करते हैं ना, वैश्वीकरण, उदारीकरण, वो इन्हीं सबके विरुद्ध है कि आप आयात शुल्क खत्म कीजिए, अगर खत्म नहीं कर सकते हैं तो कम कीजिए, लेकिन हर देश ऐसा नहीं कर सकता है। तो मित्रों ये एक खबर थी, और आखिरी जो खबर थी थोड़ी सी कंटेंट के रूप में आपके दिमाग में केवल दर्ज कराना चाहता हूं, वो जो डेक्कन हेराल्ड है उसकी प्रॉपर्टी 263 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है, जो डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट है उसने सीज की है, जब्त की है, क्योंकि इसने बहुत से बैंकों से कर्ज लिया हुआ था और बैंकों के 11 अरब रुपए, सोचिए आपके 1100 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं या कुछ इसी तरह का आंकड़ा था, करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो। इतनी बड़ी रकम डेक्कन हेराल्ड में फंसी थी, और आप देख रहे हैं कि बैंक अभी एनपीए से कितने त्रस्त हैं, मतलब वह राशि जो अब उसे मिलने की उम्मीद नहीं है। और एक बहुत अच्छी बात है कि इस पर अब भारत सरकार भी सख्त हो रही है, वित्त मंत्रालय भी सख्त हो रही है, और हमारे वित्त मंत्री ने बाकायदे इस पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, चेतावनी भी दी है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा आप समझिए कि जितना एनपीए है उसका 50% से ज्यादा तो केवल 40-50 कंपनियों में है, 40-50 कंपनी लेके बैठी हुई है, और इसका वॉल्यूम कुल कितना है, लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए, लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए हमारे बैंकों के इन कंपनियों के पास फंसे हुए हैं जिनके आने की उम्मीद नहीं है। और हमारे जो एनुअल बजट कितना होता है मित्रों, लगभग आपने देखा होगा बजट कुछ ही समय पहले पेश हुए, 21 लाख करोड़ रुपए, 21 लाख करोड़ रुपए, मतलब 33% बैंकों के फंसे हुए इन बड़ी बड़ी 40-50 कंपनियां, कुछ छोटे भी है लेकिन ज्यादातर हिस्सा 40-50 कंपनियों के पास, जो उनके टोटल उसका 12% है। और आप जानते हैं कि अगर बैंकों की हालत खराब होती है तो वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के आर्थिक हित के खराब होने की ही चेतावनी है। तो दोस्तों ये सरकार ने एक कदम उठाया है, वो आपके जानकारी में होना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर, लेकिन आता क्या हूं इस पर बात करने की स्थिति में मैं नहीं हूं, प्रेस क्लिपिंग्स आपके पास हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो हमारे जो हेल्थ अभी जो अधिनियम पारित हुआ है, मेंटल हेल्थ अधिनियम, उस पर एक अच्छा एडिटोरियल कमेंट दिया है, उसको आप देख लेंगे। दैनिक भास्कर में देवेंद्र शर्मा जी का किसानों को लेकर के, वो तो बहुत अच्छा लिखते हैं, आर्टिकल है, प्लीज आप उसे भी देख लेंगे, और जो दूसरे आर्टिकल्स हैं आप अपने अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ लेंगे। मित्रों अब मैं ईमेल पर आता हूं, और सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं। शुभम वर्मा मेरठ उत्तर प्रदेश से, खुशबू रघुवंशी गुना मध्य प्रदेश से, संतोष यादव आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से, प्रणेश शितोले सांगली महाराष्ट्र से, चेतन प्रकाश वर्मा, जय प्रकाश कुमार आरा बिहार से, रजत कुमार बोलपुर से, अमित कुमार सैदपुर यूपी से, शिव दयाल कैमूर बिहार से, पुष्पा तिवारी फैजाबाद उत्तर प्रदेश से, और कृष्णानंद कुशवाहा, आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की आप सबसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।